एक ऐसी सिचुएशन की कल्पना कीजिए जहां एक आधुनिक मेडिकल जर्नल में जो पूरी तरह से पीयर रिव्यूड हो, किसी पेशेंट की रिकवरी का ऑफिशियल डायग्नोसिस लिखा हो, चमत्कार यानी मिरेकल,
जो कि आमतौर पर होता नहीं है।
हाँ, सुनने में बिल्कुल असंभव लगता है ना।
हाँ।
क्योंकि आमतौर पर हमारी एक उम्मीद होती है कि मेडिकल साइंस और जो डायग्नोसिस है वो बिल्कुल सटीक होंगे।
बिल्कुल सटीक होंगे, हाँ,
एकदम इंजीनियरिंग की तरह। किसी की हड्डी टूटती है, एक्सरे में वो सफेद टेढ़ी लकीर दिखती है और डॉक्टर बस इशारा करके कहता है कि यहाँ दिक्कत है।
हाँ।
हम मानते हैं कि साइंस और चमत्कार एक दूसरे के बिल्कुल दुश्मन है।
सही कहा, एक बिल्कुल ऑपोजिट स्पेक्ट्रम है।
एग्जैक्टली। लेकिन आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसे एविडेंस बेस कॉन्पैक्ट करने वाले हैं जिसका आधार डॉक्टर क्रेग कीनर की एक्ट्स की किताब पर की गई डीप रिसर्च है, जो प्राचीन इतिहास और आज के मॉडर्न मेडिकल एक्सरेज को एक ही कमरे में लाकर खड़ा कर देता है। और सच कहूं तो इसके जो नतीजे सामने आते हैं
वो वाकई हिला देने वाले हैं।
हाँ, वो किसी के भी साइंटिफिकली वायर्ड दिमाग को हिला देने के लिए काफी हैं। तो इस डीप डाइव का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इस क्लैशेस को समझें।
इस साइंटिफिक और हिस्टोरिकल क्लैश को समझने के लिए ही हम इन दस्तावेजों का एक गहरा विश्लेषण कर रहे हैं। आज की चर्चा का जो मुख्य फोकस है वो यही है कि पश्चिमी यानी वेस्टर्न स्केप्टिसिज्म, जो चमत्कारों को सीधे तौर पर अंधविश्वास या मिथ मान लेता है,
जो कि बहुत कॉमन है आजकल,
कैसे चैलेंज कर रहे हैं। पर इस मॉडर्न मेडिकल मिस्ट्री तक पहुंचने से पहले हमें उस फाउंडेशन को समझना होगा जहां से ये क्लेम्स शुरू होते हैं।
राइट, बैकग्राउंड जरूरी है।
हाँ, देखिए, डॉक्टर कीनर इसकी शुरुआत लूक और एक्ट्स की किताब के लिटरेरी स्टाइल को एनालाइज करके करते हैं, क्योंकि प्राचीन इतिहास को आखिर लिखा और समझा कैसे जाता था ये जानना बहुत जरूरी है। लूक ने एक्ट्स को एक पैरेलल लाइव्स या समांतर जीवन के रूप में लिखा था।
वेट, पैरेलल लाइव्स सुनने में एक लिटरेरी टेक्निक लग रही है, इसका उस जमाने के हिसाब से क्या प्रैक्टिकल मतलब था? लेखक आखिर इस अप्रोच को क्यों चुनते थे?
वो उस वक्त के समाज में नए नेताओं या नई मूवमेंट्स को तब तक सीरियसली नहीं लिया जाता था जब तक उन्हें किसी पुराने एस्टैब्लिश्ड हीरो के साथ मैप न किया जाए।
ओ अच्छा, एक बेंचमार्क चाहिए होता था।
सही पकड़ा। प्राचीन काल में प्लूटार्क जैसे मशहूर लेखक इस शैली का बहुत इस्तेमाल करते थे। वो अलेक्जेंडर द ग्रेट और जूलियस सीजर की जिंदगियों को समानांतर रूप से लिखते थे ताकि पढ़ने वाले को उनकी महानता का एक कंपैरेटिव स्केल मिल सके।
गॉट इट। तो लूक ने भी यही किया?
लूक ने भी यही टेक्निक अपनाई। अगर उनकी पहली किताब जो उनकी गॉस्पेल है और दूसरी किताब जो एक्ट्स हैं उनका ध्यान से विश्लेषण करें तो घटनाओं का एक बहुत ही सटीक मैथमेटिकल पैटर्न दिखता है।
जैसे कि?
जैसे जीसस के कामों और बाद में चर्च या उनके फॉलोअर्स के कामों में एक जैसी समानताएं डिजाइन की गई थीं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि लेखक इंटेंशनली एक जैसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहा था अपनी नैरेटिव में?
हाँ, और यही सबसे बड़ा आलोचना का बिंदु रहा है। जैसे जीसस के मुकदमे हुए वैसे ही पॉल के मुकदमे हुए, दोनों के तीन मुकदमे जिसमें दो गवर्नर के सामने और एक हेरोड के सामने। सबसे हैरान कुन समानता आखिरी वक्त की प्रार्थना में दिखती है।
आखिरी वक्त की प्रार्थना?
हाँ, देखिए, लूक 24 में जीसस मौत के वक्त कहते हैं कि पिता इन्हें माफ कर दे, और एक्स में जब पहले शहीद स्टीफन की मौत हो रही होती है तो वो भी बिल्कुल वही प्रार्थना करते हैं, इनके पाप इनके खाते में मत लिख।
यहाँ पर तो एक स्केप्टिक तुरंत कहेगा कि ये पैटर्न इसलिए बनाया गया क्योंकि लेखक कहानी को ड्रामेटिक और मेमोरेबल बनाना चाहता था।
बिल्कुल कहेगा।
अगर एक जैसी बातें हो रही हैं तो शायद वो असल में हुई ही नहीं, बस कहानी को पैरेलल दिखाने के लिए फैब्रिकेट की गई हैं।
ये स्केप्टिसिज्म बहुत नेचुरल है, लेकिन यहाँ हमें फर्स्ट सेंचुरी ज्यूइश माइंडसेट को थोड़ा अनपैक करना पड़ेगा। मौत के वक्त ऐसी प्रार्थना करना उस समय की परंपरा और साम्स का हिस्सा था।
ओ, तो एक कल्चरल नॉर्म था।
हाँ, एक फॉलोअर या शहीद अपने गुरु के आखिरी शब्दों को दोहराए, ये उनके कल्चर में बिल्कुल स्वाभाविक था। ये फैब्रिकेशन नहीं बल्कि उनकी रियलिटी थी।
मेक सेंस।
पर इससे भी ज्यादा दिलचस्प और ठोस बात इन प्राचीन स्क्रोल्स की फिजिकल लंबाई और उनका खर्च है। उस दौर में इतिहास लिखना आज के वर्ड प्रोसेसर पे टाइप करने जैसा नहीं था।
बैकस्पेस दबाया और डिलीट हो गया वैसा नहीं था।
बिल्कुल नहीं। मैथ्यू, लूक और एक्स ये सभी नॉर्मल स्क्रोल्स की मैक्सिमम लंबाई के थे, जो करीब 32 से 35 फीट लंबा होता था।
वेट, 35 फीट का पपायरस स्क्रोल? इसका तो प्रैक्टिकल मेंटेनेंस ही अपने आप में एक प्रोजेक्ट रहा होगा।
मेंटेनेंस से ज्यादा इसकी कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर थी।
कॉस्ट?
हाँ, उस वक्त अगर कोई रोमन्स जैसी अपेक्षाकृत छोटी किताब लिखता जो मार्क की किताब के बराबर थी, तो सिर्फ पपायस मटेरियल और स्क्राइब यानी प्रोफेशनल लिखने वाले का खर्च आज के हिसाब से लगभग $2,000 होता था।
$2,000?
हाँ, लगभग $2,000। और लूक और एक्ट्स जैसी लंबी सीरीज के लिए ये खर्च कई गुना ज्यादा था।
ठीक है, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर एक छोटी किताब का खर्च $2,000 था, तो ये बिल्कुल आज के ट्विटर थ्रेड की स्ट्रिक्ट कैरेक्टर लिमिट या एक इंडिपेंडेंट मूवी के टाइट बजट की तरह काम कर रहा होगा।
बहुत सटीक एनालॉजी
है। आपका बजट तय करता है कि कहानी कितनी लंबी होगी। लेखक अपने स्क्रोल में फिलर वर्ड्स अफोर्ड नहीं कर सकता था।
बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता था। उस स्क्रोल का एक एक इंच महंगा था, इसलिए हर एक डिटेल, हर एक कैरेक्टर और हर एक नैरेटिव ट्रांजिशन का कोई ठोस मकसद होना चाहिए। और यही फाइनेंशियल लिमिट उस वक्त के लेखकों को एक रूथलेस एडिटर बनाती थी। जब लूक अपना नैरेटिव लिख रहे थे, तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कहानियां नहीं जोड़ रहे थे। इन स्क्रोल्स का एक खास मकसद था।
क्या मकसद था?
कई इतिहासकारों का मानना है कि एक्ट्स एक तरह से रोमन अदालतों के लिए एक लीगल ब्रीफ या कानूनी दस्तावेज के रूप में तैयार किया गया था।
एक कानूनी दस्तावेज रिलीजन पर?
हाँ, क्योंकि रोमन एम्पायर में नए धर्मों या जिसे वो सुपरस्टिशन कहते थे, उन्हें शक की निगाह से देखा जाता था। एक्ट्स का एक बड़ा उद्देश्य ये दिखाना था कि ईसाई यानी क्रिश्चियंस रोमन कानून के खिलाफ बगावत नहीं कर रहे थे।
अच्छा, तो एक तरह का पीआर डॉक्यूमेंट था इन कोर्ट्स,
आप कह सकते हैं। इस नैरेटिव में प्रार्थना और हाशिए पर खड़े लोगों, खासकर जेंटाइल्स यानी गैर यहूदियों तक पहुंचने पर जोर दिया गया। और किताब इस नोट पर खत्म होती है कि उनका काम बिना किसी रुकावट यानी अनहिंडर्ड चल रहा था,
जिससे रोमन अथॉरिटीज को एक मैसेज जाए कि इन्हें कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए।
एग्जैक्टली।
लेकिन देखिए, इस लॉजिक में मुझे एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स नजर आता है।
कैसा पैराडॉक्स?
अगर लूक एक लीगल ब्रीफ लिख रहे हैं रोमन मैजिस्ट्रेट्स को इम्प्रेस करने के लिए, तो उन्होंने इस महंगे स्क्रॉल का 20% हिस्सा चमत्कारों और मिरेकल्स पर क्यों खर्च किया?
ये एक अच्छा पॉइंट है।
आई मीन, स्ट्रिक्ट लॉजिकल रोमन्स के सामने ये दावे करना कि लोग मौत से वापस आ रहे हैं या हवा में गायब हो रहे हैं, ये तो उनके क्रेडिबिलिटी को तुरंत बर्बाद कर देता। कोई भी लॉयर अपने लीगल डिफरेंस में ऐसी बातें क्यों डालेगा जो जज को एकदम अंधविश्वास लगे?
इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, और यही वो जगह है जहां मॉडर्न पाश्चात्य सोच और प्राचीन समाज का टकराव शुरू होता है।
अच्छा, कैसे?
प्राचीन काल में चाहे रोमन्स हों या ग्रीक, धर्म को इज्जत इस आधार पर मिलती थी कि उसकी प्राचीन परंपरा क्या है। लूक ये साबित कर रहे थे कि ईसाईयत कोई नया डेंजरस कल्ट नहीं है, बल्कि यहूदी कानून और मूल परंपराओं का ही विस्तार है।
ओके।
और उस दौर में चमत्कारों को अंधविश्वास नहीं बल्कि डिवाइन वैलिडेशन यानी ईश्वरीय प्रमाण के रूप में देखा जाता था।
ओ, मतलब उनके लिए मिरेकल होना एक पॉजिटिव पीआर था, ना कि नेगेटिव।
बिल्कुल। पर जैसा आपने कहा, आधुनिक सोच इसे बिल्कुल अलग तरह से देखती है। 1800s के एक बहुत बड़े पाश्चात्य विद्वान थे डेविड फ्रेडरिक स्ट्राउस, जिन्होंने मॉडर्न स्केप्टिसिज्म की एक तरह से नींव रखी।
स्ट्राउस? हाँ, उनका क्या टेक था इस सब पर?
उनका मानना था कि गॉस्पल्स और एक्ट्स में जो भी मिरेकल्स हैं, वो सब मिथ्स हैं, किस्से कहानियां हैं जो कई पीढ़ियों बाद बनाए गए।
क्यों?
क्योंकि उनका मानना था कि चश्मेदीद गवाह कभी अपनी आंखों के सामने इतने नाटकीय चमत्कार नहीं देखते।
तो स्ट्राउस का आर्ग्यूमेंट यह था कि फिजिकल रियलिटी में मिरेकल्स होते ही नहीं हैं, इसलिए एंशिएंट टेक्स्ट में लिखी ऐसी बातें सिर्फ कहानियां हैं जो लोगों ने बाद में इन्वेंट कर ली।
उनका फ्रेमवर्क बिल्कुल यही था, लेकिन स्ट्राउस की इस रिजिड सोच ने उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में एक बहुत दिलचस्प और आयरोनिकल सिचुएशन पैदा कर दी।
क्या हुआ था?
उनके एक बहुत करीबी दोस्त थे एडवर्ड मोरेका। मोरेका को स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी की एक ऐसी सीरियस बीमारी थी जिसके कारण वो चल नहीं सकते थे।
ओ, बेडरिडन थे?
हाँ, उनका मेडिकल डायग्नोसिस हो चुका था और वो परमानेंटली बेडरिडन थे। फिर मोरेका ने योहान क्रिस्टोफ ब्लूमहार्ट नाम के एक पास्टर के साथ कुछ वक्त बिताया।
ओके, और ये पास्टर क्या करते थे?
ब्लूमहार्ट बीमार लोगों के लिए डायरेक्टली प्रार्थना करने के लिए जाने जाते थे। इस सेशन के बाद मोरेका मिराक्युलसली ठीक हो गए।
वेट, मिराक्युलसली ठीक हो गए मतलब उनकी रीढ़ की हड्डी ठीक हो गई?
हाँ। जब स्ट्राउस को अपने दोस्त की अगली चिट्ठी मिली, तो उन्हें पता चला कि मौरिका पहाड़ों पर ट्रेकिंग कर रहे हैं।
पहाड़ों पर ट्रेकिंग
जी।
अब यहाँ मुद्दा सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है।
सही में
स्ट्राउस, जिन्होंने अपनी पूरी एकेडमिक क्रेडिबिलिटी इस बात पर बना रखी थी कि मिरेकल्स नहीं होते
जी,
उन्होंने अपने बेडरिडन दोस्त को पहाड़ों पर चढ़ते हुए देखकर अपनी फिलॉसफी को कैसे एडजस्ट किया?
उन्होंने अपनी फिलॉसफी एडजस्ट नहीं की, उन्होंने अपने दोस्त को ही रिजेक्ट कर दिया।
वेट, रियली?
दोस्त को रिजेक्ट कर दिया?
जी हाँ,
स्ट्राउस ने इसे चमत्कार मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने एक और म्यूचुअल दोस्त को चिट्ठी लिखी और कहा कि हमने मौरिका को खो दिया है, वो अब अंधविश्वास का शिकार हो गया है।
वाओ।
स्ट्राउस ने आजू किया कि ये फिजिकल हीलिंग नहीं थी बल्कि सिर्फ साइकोसोमैटिक थी, यानी दिमागी उपज। उन्होंने कहा कि मौरिका सिर्फ साइकोलॉजिकली ठीक महसूस कर रहा है, जबकि मेडिकल रियलिटी में उसका ठीक होना नामुमकिन है।
ये एनालॉजी समझने में बहुत आसान है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप टेक सपोर्ट वाले को बुलाएं।
हाँ।
आपके सामने कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक चल रहा है, स्क्रीन परफेक्टली रेंडर हो रही है, लेकिन टेक सपोर्ट वाला कहता है कि मेरे मैनुअल के हिसाब से ये मॉडल तो डेड होना चाहिए।
बिल्कुल वैसा ही।
इसलिए स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है वो आपकी हलूसिनेशन है, क्योंकि कोड तो अपने आप फिक्स नहीं हो सकता।
सही बात है।
ये डेटा या एविडेंस की कमी का मामला नहीं है, ये प्योर कन्फर्मेशन बायस का मामला है। उनका वर्ल्ड व्यू एक ऐसे कंप्यूटर वायरस फिल्टर की तरह बन गया था जो उस जानकारी को ऑटोमेटिकली डिलीट कर रहा था जो उसके सॉफ्टवेयर में फिट नहीं बैठती थी।
और यही बायस आज तक चमत्कारों की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को रोकता रहा है। अगर आपका प्रेमिस ही ये है कि चमत्कार असंभव है, तो आप हर आई विटनेस को अनरिलायबल बता देंगे या मेडिकल रिकवरी को साइकोसोमैटिक बोल देंगे।
सही का।
लेकिन स्पाइन या बैक पेन जैसी चीजों को तो फिर भी कोई क्लेम कर सकता है कि ये स्ट्रेस रिलेटेड थे और स्ट्रेस कम होने से दर्द चला गया।
हाँ, वहाँ मार्जिन ऑफ एरर है थोड़ा।
पर अब पश्चिमी स्केप्टिक्स के सामने ऐसी मॉडर्न मेडिकल फाइल्स हैं जिन्हें साइकोसोमैटिक कहकर खारिज करना क्लिनिकली असंभव है।
तो ऐसी मॉडर्न मेडिकल सबूतों को थोड़ा और डीपली देखते हैं, क्योंकि स्पाइन वाले केस में मार्जिन ऑफ एरर होता है, पेन सब्जेक्टिव होता है, लेकिन एक्स जैसी किताबों में तो कम्प्लीटली इम्पॉसिबल चीजों का दावा किया गया है। तो आज के दौर में मेडिकल साइंस किस लेवल की रिकवरीज को डॉक्यूमेंट कर रही है?
डॉक्टर कीनर ने अपनी रिसर्च में उन केसेस को फोकस किया है जहां टिश्यू रीजेनरेशन या स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं।
ओके।
जहां ध्यान लगाने या दिमाग से सोचने से आकार नहीं बदलता, जैसे लीसा लॉरियोस का केस।
लीसा को एक सीवियर डिजेनरेटिव बोन डिजीज थी।
ओ, हड्डियों की बीमारी?
हाँ, उनके पेल्विक बोन और आसपास की हड्डियां बेसिकली गल रही थी और वो व्हीलचेयर बाउंड थी। मेडिकल साइंस में जब हड्डी का मास इस तरह से डिसॉल्व हो जाता है तो वो साइकोसोमैटिकली ग्रो नहीं कर सकती।
ऑब्वियस ही बात है। एक हीलिंग प्रेयर मीटिंग में उनके लिए प्रार्थना की गई और कुछ ही देर में वो व्हीलचेयर से उठकर दौड़ने लगी।
वेट, दौड़ने लगी?
तुरंत।
वेट, तुरंत?
तुरंत। और जब डॉक्टर्स ने नए एक्सरेज लिए तो उन्होंने डॉक्यूमेंट किया कि उनकी गली हुई हड्डियां अचानक से स्ट्रक्चरल फॉर्म में वापस जुड़ चुकी थीं।
हड्डियों का तुरंत रीजनरेट होना आम बायोलॉजी के बिल्कुल खिलाफ है। पर क्या इससे भी एक्सट्रीम स्ट्रक्चरल चेंजेस डॉक्यूमेंट किए गए हैं?
एक केस जो मेडिकल कम्युनिटी को सच में हिला देता है वो ब्रूस वेनाटा का है। इनके साथ एक हाईवे पर सीवियर ट्रक एक्सीडेंट हुआ था।
No.
एक भारी सेमी ट्रक उनके एब्डोमेन के ऊपर गिर गया था और उनके इंटरनल ऑर्गन्स क्रश हो गए थे। उनकी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टिन पूरी तरह बर्बाद हो गई थी।
आंत क्रश हो गई थी?
हाँ। सर्जरी के बाद उनके पास सिर्फ 116 सेंटीमीटर आंत बची थी। एक अडल्ट इंसान को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए कम से कम 300 सेंटीमीटर चाहिए होती हैं।
तो effectively...
वो effectively भूख से धीरे धीरे मर रहे थे क्योंकि उनकी बॉडी खाना प्रोसेस नहीं कर सकती थी।
और एडल्ट सेलुलॉयड बायोलॉजी के हिसाब से स्मॉल इंटेस्टाइन अचानक से नए मीटर्स ग्रो नहीं कर सकती। ये कोई सैलामेंडर की पूंछ जैसा नहीं है जो वापस आ जाएगी।
और यही इस केस को एक्सेप्शनल बनाता है। अस्पताल में एक विजिटर उनके पास आया और उन्होंने उनके बचाव के लिए प्रार्थना की।
फिर क्या हुआ?
कुछ समय बाद जब उनके वेट में सुधार दिखने लगा और डॉक्टर्स ने दोबारा स्कैन्स किए तो मेडिकल रिकॉर्ड्स में ये दर्ज किया गया कि उनकी छोटी आंत 116 सेंटीमीटर से बढ़कर लगभग 300 सेंटीमीटर तक लंबा होकर आकार ले चुकी थी।
300 सेंटीमीटर, दैट इज अनबिलीवेबल।
एक अडल्ट में इतनी बड़ी मात्रा में इंटेस्टाइनल ग्रोथ हिस्टोरिकली और मेडिकली अनरिकॉर्डेड और इम्पॉसिबल मानी जाती है।
अगर मेरे सामने दो एक्सरेज रखे हों एक एक्सीडेंट के बाद का और एक रिकवरी के बाद का, और दोनों के बीच का ब्रिजिंग इंटरवेंशन सिर्फ प्रेयर हो, तो एज अ साइंटिफिकली माइंडेड पर्सन मैं सोचने पर मजबूर हो जाऊंगा कि हम बायोलॉजी को पूरी तरह नहीं समझते।
और यही वजह है कि इन फिनोमिनन्स को अब सीरियस एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जैसे मोजाम्बिक में बहरेपन यानी डेफनेस के केसेस थे।
मोजाम्बिक में?
हाँ, वहाँ रूरल एरियाज में जहाँ हियरिंग एड्स या एडवांस सर्जरी अवेलेबल नहीं थी, वहाँ प्रेयर मीटिंग्स के बाद लोगों को दोबारा सुनाई देने लगा।
अच्छा।
इस फिनोमिनन को इंडियाना यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर और उनकी रिसर्च टीम ने फील्ड में जाकर फॉर्मली टेस्ट किया, ऑडियोमीटर से मेजर किया।
ओ, प्रॉपर मेजरमेंट हुई?
बिल्कुल। और इस एम्पिरिकल स्टडी को बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा पब्लिश किया गया।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश किया? दैट्स ह्यूज।
हाँ, या फिर डॉक्टर रेक्स गार्डनर और जॉय विनिफ्रेड का केस लीजिए। जॉय को वर्टिकल हेट्रोफोरिया नाम की आंखों की एक ऐसी रेयर और सिवियर बीमारी थी कि उनकी कंडीशन की तस्वीर मेडिकल पैम्पलेट्स में केस स्टडी के तौर पर छपती थी।
वाओ, मतलब वो टेक्स्ट बुक केस थे उस बीमारी की।
हाँ, प्रेयर इंटरवेंशन के ठीक बाद वो इंस्टेंटली ठीक हो गई और मेडिकल रीवैल्यूएशन में उनका विजन बिना किसी करेक्टिव लेंस के 20/20 पाया गया।
एक ऑब्जर्वेशन जो इस पूरी चर्चा से उभर कर आती है, और सच कहूं तो ये मुझे बहुत परेशान भी करती है।
क्या ऑब्जर्वेशन?
वो ये कि लीगल और सोशल सिस्टम्स में हम आई विटनेसेस को ट्रीट कैसे करते हैं। अगर एक हाईवे पर कोई कार क्रैश होता है तो जस्टिस सिस्टम उन लोगों की टेस्टिमनी पर रिलाई करता है जो फिजिकल रूप से वहां खड़े थे।
सही बात है।
जज उस व्यक्ति को गवाह नहीं मानता।
हाँ।
जो 500 किलोमीटर दूर अपने घर में बैठकर मैथमेटिकल मॉडलिंग से बता रहा है कि क्रैश होना नामुमकिन था। तो जब बात मिरेकल्स की आती है जहां हजारों आई विटनेसेस हैं, तो मॉडर्न एकेडमिया उन आई विटनेसेस को डिस्कार्ड क्यों कर देता है?
यहां सबसे हैरानंगेज बात ये है कि ये सोशियोलॉजी और लॉ का एक बहुत ही प्रोफाउंड इंटरसेक्शन है। चश्मदीद गवाहों को डिसमिस करना एक ऐसी लग्जरी है जो स्केप्टिसिज्म हमें देता है जब तक बात फिजिकल रियलिटी से टकराती नहीं।
हाँ, एग्जैक्टली।
पर अभी तक हमने टिश्यू रीजनरेशन या डेफनेस की बात की है। डॉक्टर कीनर की इस स्टडी का सबसे चैलेंजिंग हिस्सा वो है जिसे किसी भी साइकोलॉजी या नेचुरल बॉडिली मैकेनिज्म से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता।
ओके, ऐसी कौन सी चीज है?
मैं बात कर रही हूँ रेससिटेशंस की, मौत से वापस आने की।
ओ बॉय।
क्योंकि एक बार ब्रेन डेथ का प्रोसेस शुरू हो जाए तो कोई भी साइकोसोमैटिक एक्सक्यूज काम नहीं आ सकता। एक मरा हुआ इंसान अपनी माइंड की ताकत से अपना दिल दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकता।
ये एक एक्सट्रीम क्लेम है। क्लिनिकल डेथ एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न माना जाता है। इस फील्ड में हमारे पास किस तरह का डॉक्यूमेंटेड डेटा है?
सबसे प्रोमिनेंट डॉक्यूमेंटेड केस एक हाईली क्रेडेंशियल्ड कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर चॉन्सी क्रैंडल का है। उनके एक पेशेंट थे जेफ मार्किन, जिन्हें मैसिव हार्ट अटैक आया था।
ओके।
इमरजेंसी रूम में मार्किन लगभग 40 मिनट तक फ्लैट लाइन रहे।
40 मिनट?
हाँ। उनके दिल की धड़कन वापस लाने की हर मेडिकल कोशिश फेल हो चुकी थी। डॉक्टर क्रैंडल जो वार्ड इंचार्ज थे, उन्होंने लीगली मार्किन को मृत घोषित कर दिया।
तो लीगली वो डेड थे।
एक नर्स उनकी बॉडी को मॉर्ग में भेजने के लिए रैप कर रही थी। पेशेंट के हाथ और चेहरे पर साइनोसिस सेट इन हो चुका था, यानी ऑक्सीजन फ्लो रुकने की वजह से स्किन पूरी तरह से काली और नीली पड़ चुकी थी।
40 मिनट बिना सर्कुलेशन के। मेडिकल साइंस में तो ये माना जाता है कि अगर दिमाग को 6 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो सिवियर ब्रेन डैमेज इरिवर्सिबल हो जाता है। 40 मिनट बाद तो बॉडी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग डीके होना शुरू कर देती है।
और इसी इम्पॉसिबल स्टेज पर डॉक्टर क्रैंडल ने कुछ ऐसा किया जो किसी प्रोटोकॉल में नहीं था। उन्हें एक इंटेंस अर्ज महसूस हुई प्रार्थना करने की।
वहीं इमरजेंसी रूम में?
वहीं इमरजेंसी रूम में, मृत बॉडी के पास। फिर उन्होंने अपने एक कॉलीग से डिफिब्रिलेटर चार्ज करने को कहा ताकि एक आखिरी बिना उम्मीद का शॉक दिया जा सके।
ओके।
जैसे ही उन्होंने शॉक दिया, वो दिल जो 40 मिनट से डेड था, उसने एक नॉर्मल परफेक्ट रिदम में धड़कना शुरू कर दिया।
वेट, 40 मिनट बाद नॉर्मल रिदम?
हाँ, और सबसे हैरानकुन बात ये थी कि 40 मिनट बिना ऑक्सीजन के रहने के बावजूद जब मार्किन होश में आए तो उन्हें किसी भी तरह का कॉग्निटिव या ब्रेन डैमेज नहीं था। वो पूरी तरह से इंटैक्ट थे।
रोंगटे खड़े कर देने वाला किस्सा है, और ये किसी ऑब्स्क्योर रेफरेंस का नहीं, एक प्रैक्टिसिंग कार्डियोलॉजिस्ट का अपना एक्सपीरियंस है।
क्या किसी और ट्रेन मेडिकल प्रोफेशनल का अपना ऐसा केस रहा है?
एक और केस डॉक्टर शॉन जॉर्ज का है, जो खुद एक प्रैक्टिसिंग फिजिशियन है. उन्हें मैसिव हार्ट अटैक आया और उनकी अपनी मेडिकल टीम उन्हें रिवाइव करने में फेल रही.
अपनी टीम?
हाँ, वो लगभग 55 मिनट तक डेड फ्लैट लाइन पर थे. उनके कॉलीग्स लाइफ सपोर्ट हटाने वाले थे क्योंकि मेडिकल टर्म्स में आगे कुछ करना फ्यूटाइल था. उनकी पत्नी ने आकर उनके बेड के पास घुटने टेक कर प्रार्थना शुरू की.
फिर
उस प्रार्थना के दौरान होप उनका दिल मॉनिटर पर वापस धड़कने लगा. आज डॉक्टर शॉन जॉर्ज खुद वापस मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने दिमाग की पूरी शक्ति के साथ.
वाओ.
और ये सिर्फ वेस्टर्न हॉस्पिटल्स में नहीं हो रहा. डॉक्टर कीनर ने इंडिया से एक विक्रम नाम के हिंदू लड़के का केस डॉक्यूमेंट किया है, जो एक पॉन्ड में डूब गया था. लोकल अस्पताल ने उसे मृत घोषित कर दिया था, पर घंटों बाद एक क्रिश्चियन ग्रुप की प्रार्थना करने से वो फिजिकली जिंदा हो गया और पूरी तरह ठीक हो गया.
देखिए, आई हैव टू स्टॉप यू देयर, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां कोई भी लॉजिकल लिसनर कंप्लीटली चेकआउट कर सकता है.
मुझे पता था आप ये कहेंगे.
तो इस सबका आखिर मतलब क्या है? अगर प्रार्थना में वाकई इतनी ताकत है और ये रिससिटेशंस मैथमेटिकली सच हैं, तो हर किसी की रिकवरी क्यों नहीं होती? डॉक्टर कीना, जिन्होंने ये एक्सटेंसिव रिसर्च लिखी है, उनके खुद के बाल क्यों झड़ गए हैं? उन्हें ग्लासेस क्यों लगते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर डॉक्टर क्रैंडल अपने एक पेशेंट को प्रार्थना से वापस ला सकते हैं, तो हमें पता है कि उनके खुद के बेटे की कैंसर से मौत हो गई थी.
हाँ, ये सच है.
अगर ये मिरेकल फॉर्मूला इतना पावरफुल है, तो ये इतना रैंडम क्यों है? क्या ये रैंडमनेस खुद में इस बात का सबूत नहीं है कि ये सिर्फ स्टेटिस्टिकल अनोमलीज हैं और इसमें कोई ईश्वरीय या डिवाइन लॉजिक नहीं है?
ये क्रिटिसिज्म बिल्कुल वैलिड है और थियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल डिबेट्स का सबसे सेंट्रल सवाल है, द प्रॉब्लम ऑफ पेन.
एग्जैक्टली.
और डॉक्टर कीना इस आर्ग्यूमेंट से भागते नहीं है. उन्होंने अपनी किताब में खुले तौर पर डॉक्यूमेंट किया है कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने खुद मिसकैरेजेस झेले हैं, जिसके लिए उन्होंने दिल से प्रार्थना की थी.
डॉक्टर चांसी क्रैंडल का अपना बेटा बचा नहीं,
तो इसको कैसे रिकंसाइल करें? देखिए, मेडिकल मिरेकल्स किसी एटीएम मशीन की तरह काम नहीं करते, जहां आपने फॉर्मूला डाला और रिजल्ट निकल आया. पर यहां स्टेटिस्टिकल और लॉजिकल मुद्दा बदल जाता है. मुद्दा ये नहीं है कि क्या हमेशा ऐसा होता है, मुद्दा ये है कि क्या कभी भी ऐसा होता है,
एक बार भी, राइट?
अगर पूरी ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में मिलियंस केसेस में से एक बार भी कोई ऐसी घटना मेडिकली डॉक्यूमेंट हो जाए जो फिजिकल लॉज के खिलाफ हो, जैसे 40 मिनट तक डेड रहने के बाद बिना ब्रेन डैमेज वापस आना, तो इसका मतलब है कि रियलिटी का वो सुपरनैचुरल दरवाजा, जिसे मटेरियलिज्म ने पर्मानेंटली लॉक कर दिया था, वो अभी भी ओपन है. ये एक्सेप्शन प्रूव करता है कि हमारी करंट साइंटिफिक लॉज रियलिटी को पूरी तरह माप नहीं कर पाई है.
तो इसका आखिर मतलब क्या निकलता है? आज के इस गहरे विश्लेषण ने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टाइमलाइंस को एक साथ वीव किया है.
बिल्कुल.
हमने देखा कि कैसे ल्यूक और एक्ट्स की किताब उस दौर की 35 फीट लंबी पपायरस स्क्रोल की फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के बीच एक लीगल और हिस्टोरिकल डिफेंस के रूप में लिखी गई थी.
हाँ, कॉन्टेक्स्ट सेट किया गया.
हमने देखा कि कैसे उस जमाने के मिरेकल्स रोमन अदालतों में एंशियंट ट्रेडिशंस को वैलिडेट करने के लिए जरूरी थे. और फिर हम स्ट्रॉस और उनके बायस से होते हुए लीजा लॉरियोज की हड्डियां, ब्रूस वनाटा की इंटेस्टाइंस और जेफ मार्किन की 40 मिनट की डेथ और रिकवरी तक आए.
एक लंबा सफर था.
ये सफर ये क्लियरली एस्टैब्लिश करता है कि एक्स की किताब सिर्फ एक एंशियंट मिथ या प्रोपेगेंडा नहीं है. ये एक हिस्टोरिकली कंसिस्टेंट वर्ल्ड व्यू को प्रेजेंट करती है, जिसके सबूत हम आज भी सर्जिकल वार्ड्स और मॉडर्न एक्सरे मशीन्स में देख रहे हैं.
और जब हम एंशियंट टेक्स्ट को सिर्फ एक पुरानी किताब मानने के बजाय उन्हें ह्यूमन एक्सपीरियंस के एक लंबे टाइमलाइन के हिस्से के रूप में देखते हैं, तब एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न साइंस एक दूसरे के विरोधी नहीं लगते.
सही कहा.
आंखों देखे गवाह, चाहे वो 2000 साल पहले के हों या आज के, एक ही तरह के फिनोमेना को रिपोर्ट कर रहे हैं. हमें बस उन क्लेम्स को रिगरसली बट ओपन माइंडेडली एनालाइज करने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम उन्हें पहले से बनी हुई बाउंड्रीज के बाहर फेंक दें.
और इसी विचार के साथ हम इस डीप डाइव को एक ऐसे सवाल पर छोड़ना चाहेंगे जो इन सभी मेडिकल केसेस और हिस्टोरिकल एविडेंस से निकलता है. सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल.
जरूर.
आज की चर्चा के बाद क्या हमें खुद से ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि कहीं हमारा मॉडर्न साइंटिफिक लॉजिकल वर्ल्ड व्यू एक ऐसे ओवरएक्टिव कंप्यूटर वायरस फिल्टर की तरह तो नहीं बन गया है? एक ऐसा फिल्टर जो किसी भी ऐसी कॉम्प्लेक्स रियलिटी या जानकारी को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है जो उसके छोटे से सॉफ्टवेयर पैकेज में फिट नहीं बैठती, और वो भी उस डेटा की सच्चाई या ऑथेंटिसिटी को चेक किए बिना क्या हम सब वाकई ओपन माइंडेड ट्रूथ सीकर्स हैं या हमने बस अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से रियलिटी को फ्रेम कर लिया है? क्योंकि शुरुआत में हमने जिस क्लियर और बाइनरी एक्सरे मशीन की बात की थी, शायद खराबी एक्सरे की अनएक्सपेक्टेड रिपोर्टों में नहीं है। शायद हमने ही उस मशीन को उस चीज को समझने या देखने के लिए प्रोग्राम ही नहीं किया जो उस दुनिया में हमेशा से मौजूद थी।